ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فنبي سيدنا الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ فِي النَّاسِ لَكَثِيرٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ। ये एक हदीस है हजरत अबू सईद रदी हो, इस रिवायत और हदीस के नकल करने वाले हैं। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अकला तय्यबन, जिस आदमी ने हलाल गिजा खाई, वामिल फी सुन्नति, और सुन्नत के मुताबिक अमल किया, वामिनन नासु बवायकहु, और लोग उसकी तरफ से पहुंचने वाली ईजाओं और तकलीफों से मामून और महफूज रहे, दखल अल जन्ना, वो आदमी जन्नती है। ये सुनकर मजलिस में से एक आदमी ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, ऐसे लोग तो आजकल बहुत सारे हैं। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाद के ज़मानों में भी होंगे। अपने इस इरशाद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने का एक बहुत मुख्तसर नुस्खा, शॉर्ट फार्मूला बता दिया, जिसमें तीन चीज़ों का अहतमाम करना है। हलाल गिज़ा, रोज़ी अपनी हलाल होनी चाहिए, और सुन्नत का इत्तेबा, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे आदमी, और अपनी तकलीफ़ों से लोगों को महफूज रखे। इस वक्त मुझे इस हदीस के दूसरे जुज पर गुफ्तगू करनी है कि आदमी को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी का अहतमाम करना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसीलिए दुनिया में भेजा कि आपकी ज़ात लोगों के लिए नमूना करार दी जाए। क़ुरान पाक में बारी ताला का इरशाद है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात में बेहतरीन नमूना मौजूद है। गोया हर आदमी को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक बनाने का अहतमाम करें। आप कोई नया कपड़ा लाए हों, दर्जी के लिए पास लेकर के जाएं कुर्ता सिलवाने के लिए, साथ में अपना एक कुर्ता जो पहले से सिला हुआ मौजूद है उसको देकर यूं कहें कि ये जो कपड़ा है उसका कुर्ता इसी के मुताबिक बनाना है। उसने कहा, मैं तो 500 रुपये सिलाई लूँगा। कहा, 600 दूंगा, लेकिन ज़रा भी फ़र्क नहीं आना चाहिए। कहा, ठीक है। अब अगर वो उसके मुताबिक नहीं सीता, जरा सा फर्क आ गया तो आप सिलाई तो क्या देंगे, वो कपड़ा जो था उसकी कीमत भी उससे वसूल करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया में इसीलिए भेजा है कि जिंदगी किस तरह गुजारनी है, हर जिंदगी के हर शोबे को किस तरह हमें गुजारना है, बनाना है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात को सामने रख कर उसके मुताबिक बनाने का एहतमाम किया जाए। हर चीज़ में, रफ्तार में, गुफ्तार में, वज़ाकता में, इबादात में, मामलात में, माशरत में और अखलाक में, हर चीज़ में आदमी अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक बनाने की कोशिश करे। शमाइल तिर्मिज़ी में है, एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं जा रहा था, उनकी लुंगी ज़रा नीचे घुटनों तक पहुंची हुई थी, टखनों तक, पीछे से आवाज़ आई, इरफा इजार का फ़ैनहु अनका व अबका, अपनी लुंगी को ऊंचा कर लो, इसमें लुंगी की सफाई भी है और देर तक रहने वाली भी है। इसलिए कि कपड़ा अगर ज़मीन के साथ घिसटेगा तो नतीजा ये होगा कि मैला हो जाएगा, सफाई नहीं रहेगी और जल्दी से वो ख़राब हो जाएगा, जल्दी से वो फट जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ैनहु अनका व अबका। अब हज़रात सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल में कोई ऐंच पेंच नहीं, सुना उस पर अमल करना है। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लुंगी ऊंची करने का की जो हिदायत दी उसमें वजह के तौर पर एक जुमला इरशाद फरमाया, इसमें तुम्हारा कपड़ा जो है वो साफ भी रहेगा और देरपा भी रहेगा। आपके इस इरशाद की वजह से उन सहाबी को ये गलत फहमी हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे तखने से ऊपर इजार लुंगी करने के लिए जो हिदायत दे रहे हैं, फरमा रहे हैं, उसकी वजह मेरी लुंगी की हिफाजत है, मेरी खैरख्वाही। तो कहते हैं कि क्या मैंने पीछे देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, ये तो मामूली चदरिया है, यानी अगर वो मैली भी हो गई, फट भी गई, तो उससे कोई ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। जवाब का मकसद ये था। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया अमालक फिया उस्वतुन, क्या तुम्हारे लिए मेरी ज़ात के अंदर नमूना मौजूद नहीं? वो सहाबी कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लुंगी को देखा कि वो आधी पिंडली तक थी, फौरन मैंने दुरुस्त कर लिया। गोया मैंने ये रिवायत इसलिए पेश की कि ये लिबास जो आम तौर पर हम पहनते हैं उसमें भी हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी का एहतमाम करना चाहिए। वह हर चीज़ को हमें ये देखना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज़ क्या था। हज़रात सहाबा रिद्वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन इसका बड़ा एहतमाम करते थे। हुदैबिया के मौके पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रात सहाबा की 1,500 की जमात को लेकर उमरा के लिए तशरीफ़ ले गए, मक्का मुकर्रमा वालों को और मुशरिकीन कुरैश को पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, तो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हम इनको मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आदमी भेजे थे हालात मालूम करने के लिए, उन्होंने आके बतलाया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कि उन लोगों ने आपके साथ जो है लड़ाई की तैयारियां कर ली है, तय कर लिया है कि کہ آپ کو وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے, اور اطراف کے جو قبیلے والے ہیں ان سے بھی اس سلسلے میں انہوں نے معاملہ کر لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں مشورہ کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, ہم تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, ہم اسی نیت سے آگے بڑھیں, کوئی آدمی اگر ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کرے گا تو دیکھ لیں گے. چنانچہ آگے بڑھے, پتہ چلا کہ ان کا ایک دستہ گھوڑے سواروں کا ایک ٹکڑی آگے آ رہی ہے مقابلے کے لیے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے تھے, ان کو ان لوگوں نے آگے بھیجا تھا. ٹکراؤ کی نوبت نہ آئے اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا راستہ بدل دیا اور دوسرے راستے سے آگے بڑھے. یہاں تک کہ جب حدیبیہ میں پہنچے, حدیبیہ یہاں وہ ایک کنویں کا نام ہے اور وہاں پھر وہ ایک جگہ کا نام ہے, اور اس کا کچھ حصہ حرم میں ہے, کچھ حصہ ہل میں, حرم سے باہر. وہاں جب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اٹھانے کے لیے آواز دی تو وہ اٹھی نہیں. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اس منظر کو دیکھ کر کے کہنے لگے, خلا تل قصوہ, کہ قصوہ تو اڑ گئی, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھانا چاہتے ہیں پھر بھی اٹھ نہیں رہی ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما خلقت ولیکن حبسہا حابس الفیل, میری اونٹنی اڑ نہیں گئی ہے لیکن اس کو روک دیا ہے اس ذات نے جس نے ہاتھی والوں کے لشکر کو روکا تھا, گویا اللہ کے حکم سے یہ بیٹھ گئی ہے. آپ کو بتلایا گیا کہ آپ یہیں ٹھہریں اور مکہ والوں کے ساتھ صلح کی کوشش کریں. چنانچہ آپ وہیں ٹھہر گئے اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو پیغام دے کر وہاں مکے والوں کے پاس بھیجا کہ ہم تو لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں, ہم کو موقع دیا جائے بیت اللہ کا طواف صفا مروہ کی سعی کر کے ہم واپس لوٹ جائیں گے. پہلا آدمی جو بھیجا تھا اس بیچارے کے ساتھ تو ان لوگوں نے ایسا معاملہ کیا کہ اس کا اونٹی ذبح کر ڈالا, اس کی بھی جان کے لالے پڑ گئے, بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا اس نے بتلایا. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ تم جاؤ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بنو امیہ اس وقت بھی مکہ مکرمہ میں بڑا طاقتور سمجھا جاتا تھا اور ان کے قبیلے کے بڑے لوگ وہاں کثیر تعداد میں موجود تھے, اور اس زمانے میں ایک دوسرے کی جو مدد کی جاتی تھی وہ رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر, مذہب نہیں دیکھتے تھے کہ کون ہے, یہ مسلمان ہے یا مشرک ہے, نہیں, کو ہمارے خاندان کا ہے تو اس کی حمایت کی جاتی تھی. چنانچہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ میں یہ اطلاع پہنچی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الچی بن کر کوئی خاص میسیج لے کر کے آ رہے ہیں, ان کے قبیلے والے ہتھیار سج کر کے لگا کر کے ان کے استقبال کے لیے مکہ مکرمہ کے باہر آئے. بڑی تعداد تھی ان کی, بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا اور ان سے کہا کہ تم جاؤ اور جو بھی پیغام جس کو بھی پہنچانا ہو وہ پہنچاؤ, کوئی آپ پر انگلی رکھ سکتا نہیں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. چنانچہ وہ اپنے ساتھ ان کو لے کر کے گئے. جس وقت وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جا رہے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لنگی آدھی پنڈلی تک تھی. اس زمانے میں مکہ والوں کا اور خاص کر کے مکہ کے جو بڑے لوگ کہلاتے تھے سردار قسم کے, ان کا فیشن یہ تھا کہ وہ اپنی لنگی اتنی نیچی رکھتے تھے کہ زمین سے گھستے, اور اسی کے اندر وہ اپنا اسٹیٹس سمجھتے تھے کہ بھائی ہمارا مقام اسی میں محفوظ رہتا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ان کے قبیلے والوں نے کہ ان کی لنگی تو آدھی پنڈلی تک ہے, انہوں نے فوراً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متنبہ کیا, عثمان तुम मक्का के बड़े बड़े सरदारों के पास एक खास पैगाम लेकर के जा रहे हो, एलची बन कर के जा रहे हो, और वो तुम्हारे इस लिबास को यानी तुम्हारी लुंगी की इस अंदाज को आधी पिंडी तक तुम पहने हुए हो, उसको देखकर तुमको जलील और हकीर समझेंगे। तुम भी अपनी लुंगी को नीचा कर लो, इतनी नीचा कर लो कि वो जमीन से घिसटने लगे। गया फैशन यही है, और वो ऐसी इसके खिलाफ जो कोई होता है उसको अच्छा नहीं समझा जाता। आजकल हम भी अपनी वजह सिर्फ इसी वहम में बदलते हैं कि लोग हमारे मुताल्लिक यूं सोचेंगे। बहरा हजरत जब उन्होंने ये बात कही तो हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला उन्होंने जवाब में क्या फरमाया वो असल में मैं नकल करना चाहता हूँ। उन्होंने अर्ज किया, फरमाया हाकदा इज़रत हबीबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लुंगी बांधने का अंदाज स्टाइल यही है, मैं इससे जरा भी बदल सकता नहीं। कैसे फख्र के साथ कहा, ये मिजाज होना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को ऐसा समझे कि इसी में हमारी इज्जत है, यही हमारे लिए सरबलंदी का जरिया है, इसी के अंदर हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। हजरात सहाबा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का मिजाज ये था। दुनिया जो कुछ समझती हो एक दिमाग में, वो तो ये लिबास ये सारी चीजें तो आदमी जिस समझ के साथ चलता है। आजकल आप नहीं देखते फैशन, कैसे कैसे फैशन निकलते हैं। बात तो ऐसे कि लोग देख के हंस रहे हैं। मुझे कई साल पहले का वाकया याद है, कई तकरीबन 30-35 साल पहले की बात है। एक मरतबा दिल्ली में वहाँ जो है खारी बावली वाले बाजार जो है बड़ा मशगूल बाजार, भीड़ भाड़ वाला, वहाँ से मैं गुजर रहा था उस पर साइकिल रक्षा के ऊपर, तो दो जो है ये सयाह क्या कहते हैं उसको, टूरिस्ट थे यूरोप के कोई। अब उनके जो है बालियां लगी हुई है, बाल आधे कटे हुए आधे ये हैं, कपड़े आधे मर्दाना आधे जनाना, जितनी दुकान वाले थे सब देख के जोर जोर से हंस रहे हैं, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं, वो अपने इसमें मस्त हैं। मुझे इस मंजर को देखकर बड़ी गैरत आई कि देखो इन लोगों की निगाहों में ये लिबास क्या है, पसंदीदा है। सारी दुनिया हंस रही है तो भी वो इसकी परवाह नहीं करते। आज हमारा हाल ये हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीकों को गैरों की मुशाबत के खातिर हम छोड़ रहे हैं। ये हमारे इस सोच में फर्क आ गया। हजरत माकिल इब्ने यसार रदी अल्लाह ताला नो एक सहाबी है, जिस जमाने में अल्लाह ताला ने इस्लाम को फतुहात अता फरमाई, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला नो के दौरे खिलाफत में वहाँ इराक के इलाके में जहाँ आमतौर पर ये मजूसी रहते थे आतिश परस्त, वहाँ एक मरतबा खाना खा रहे थे। खाने के दौरान वो तो सरदार थे यानी वहाँ के हाकिम थे उस इलाके के, खाना खाने के दौरान लुकमा नीचे गिर गया तो उन्होंने फौरन उसको उठाकर उसके ऊपर लगी हुई धूल साफ करके उसको खा लिया। ये मंजर देखकर वहाँ जो वहाँ उस इलाके के गैर मुस्लिम मजूसी सरदार लोग बैठे हुए थे वो एक दूसरे को देखने लगे, इशारे करने लगे आंखों के जरिए से। उस पर हजरत का जो खादिम था उसने हजरत से अर्ज किया, हजरत ये लोग जो हैं आपके इस तरह लुकमा उठाकर साफ करके खाने पर आपस में ये जो है इशारे करते हैं, गोया उसको ऐब समझते हैं कि आपके सामने इतना सारा खाना उमदा पड़ा हुआ है, ये गिरा हुआ लुकमा ले करके उसको साफ करके खाने की क्या जरूरत थी। उस पर उन्होंने फरमाया कि इनकी वजह से मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद को छोड़ सकता नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने के दौरान अगर कोई लुकमा गिर जाए तो उस लुकमे को उठाकर साफ करके खा लो, उसको शैतान के लिए मत छोड़ो। देखो ये हजरात सहाबा की गैरत ईमानी देखो, वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके को किसी हाल में छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यही इसी को कहते हैं कि हमने उसवा नमूना किसको बनाया, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात को। हर वक्त हमारे दिलो दिमाग में यही रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या था और उसी के मुताबिक हमें अपने आप को डालना है। और कुरान पाक में अल्लाह तबरक तआला ने इत्तिबाए सुन्नत की बड़ी ताकीद फरमाई, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। ए नबी, आप कह दीजिए लोग मुसलमानों को बतला दीजिए कि इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिउनी, मेरी पैरवी करो, जिस तरह मैं रहता हूँ इस तरह रहो। हजरत मौलाना शाह फजल रहमान साहब गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले नक्शबंदिया के बड़े बुजुर्गों में से हैं, जो उधर शिमाली हिंद में गुजरे हैं। ये फत्तबिउनी का जो जुमला है कर्मा, उसका तर्जमा करते थे मेरी चाल चलो। ए नबी, आप कह दीजिए कि तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी चाल चलो, मेरे तरीके के मुताबिक रहो। युहिब्बुकुमुल्लाह, हुजूर की पैरवी अगर करोगे तो उसका ये क्या होगा सिला और इनाम क्या मिलेगा? उसका इनाम ये मिलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करेंगे, हुजूर की पैरवी के नतीजे में अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी। जितना ज्यादा आदमी अल्लाह तबारक तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इत्तिबा करेगा, उतना ही ज्यादा अल्लाह तबारक तआला उसके साथ क्या करेंगे, मोहब्बत फरमाएंगे। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेंगे। अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए फिर क्या है, अल्लाह की मोहब्बत के नतीजे में सारी मखलूक की मोहब्बत हासिल होती है। बुखारी शरीफ के अंदर है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो हजरत जिब्रील को फरमाते हैं, जिब्रील मैं अपने फलाने बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उनसे मोहब्बत करो। चुनांचे हजरत जिब्रील उस बंदे से मोहब्बत करते हैं, उसके बाद हजरत जिब्रील आसमानों में यानी फरिश्तों के अंदर ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला अपने फलाने बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनांचे आसमान वाले उससे मोहब्बत करते हैं, फिर आगे हुजूर फरमाते हैं ثم يوزو له القبول في الارض, फिर अल्लाह ताला की तरफ से उस बंदे के लिए जमीन के अंदर मकबूलियत डाल दी जाती है, गोया जमीन के वाले उस बंदे के साथ मोहब्बत करते हैं। अल्लाह वाले जो होते हैं, देखा अल्लाह वाला जब कहीं किसी जगह पहुंचता है, वाकईतन जो अल्लाह वाला होता है लोग क्या करते हैं उसके पीछे पीछे, ओ उसके गोया उसके साथ ऐसी मोहब्बत, एक निगाह उसकी हमारे ऊपर पड़ जाए, हर एक की ये तमन्ना होती है। ये लोगों के दिलों में मोहब्बत किसने डाली उसकी, क्या उन्होंने कोई पैसा खर्च किया था, किसी की दावत की थी, किसी को खिलाया था? ये क्या इबादत करते हैं लोगों को मालूम है? कुछ नहीं, लेकिन बस कुदरत का एक ऐसा निज़ाम है कि अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों के दिलों में ऐसी मोहब्बत डाली जाती है कि वो दीवानावार उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। ये दरअसल खुदाई निज़ाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन हफिज़ा सुन्नती अकरमहुल्लाहु बिअरबईन, अल्मुहब्बतु फी कुलूबिल बरारा, वल्हैबतु फी कुलूबिल फजरा, वस्सआतु फिर रिज़्क़ वस्सिक़तु फिद्दीन। के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मेरी सुन्नत की हिफाजत करेगा, मेरी सुन्नत पर अमल का एहतमाम करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको चार नेमतों से, चार इनामात से नवाजेंगे। पहला अल्मुहब्बतु फी कुलूबिल बरारा, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के दिलों में उसकी मोहब्बत डालेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से जो मोहब्बत होती है डाली जाती है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, नेक बंदों से, वो मोहब्बत करते हैं और उनको देखकर दूसरे लोग मोहब्बत करते हैं। ये जो हदीस अभी आपको सुनाई बुखारी शरीफ की, حضرت نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کوئی آدمی لوگوں کے اندر محبوب ہے تو اس کی یہ محبوبیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, یہ دیکھنا ہو تو دیکھو کہ اس سے محبت کی شروعات کہاں سے ہوئی, خواص سے, یعنی اللہ کے جو مخصوص بندے ہیں وہ پہلے محبت کرنے لگے, اس کے بعد پھر لوگ اس سے محبت کا معاملہ کرنے لگے, تو سمجھ جاؤ کہ یہ محبت اللہ کی طرف سے ہے. چونکہ وہاں پہلے اللہ نے محبت فرمائی, پھر حضرت جبریل سے کہا, پھر آسمان والوں کے دلوں میں محبت ڈالی گئی, اس کے بعد زمین پر آئی. تو گویا المحبت فی قلوب البرارہ, اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دیتے ہیں اور اس کی نتیجے میں لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور کسی کی مقبولیت اگر عوام میں ہے لیکن خواص اہل اللہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں, تو یہ اللہ کے نزدیک اس کے مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے, یہ لکھا ہے کتابوں میں. دوسری علامت بتلائی, والہیبت فی قلوب الفجرہ, یہ جو بدماش لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ان کی ہیبت ڈال دیتے ہیں, حالانکہ ان کے پاس کوئی لشکر نہیں ہوتا, کوئی فوج نہیں ہوتی, ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رعب ایسا ان کو دیا جاتا ہے کہ ایسے لوگ ان کے سامنے جانے سے جو ہے گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں, لرزتے ہیں. حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ ایک مرتبہ مظفر نگر کا کلیکٹر جو تھا اس نے لوگوں سے کہا, یہ آزادی سے پہلے کی بات, انگریز کے زمانے میں کلیکٹر کا مقام بہت بلند سمجھا جاتا تھا, وہ بہت بڑا صاحب اختیار حاکم ہوا کرتا تھا. تو اس نے لوگوں سے کہا, بھائی ہم نے سنا ہے انہوں نے ہماری حکومت کے خلاف جو ہے جنگ کی تھی شاملی کے میدان میں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ کے ماتحتی میں ہمارے سارے اکابر نے انگریز کا مقابلہ کیا تھا شاملی کے میدان میں, مگر اللہ کو منظور نہیں تھا, کامیابی نہیں ہوئی. بہرحال وہ تو پھر اسی کے بعد بہت آگے معاملہ چلا تھا. تو اس انگریز کلیکٹر نے یوں کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کیسے ہیں. چنانچہ وہ حضرت کی ملاقات کے لیے چلا, حضرت کو پتہ چلا کہ وہ آ رہا ہے. حضرت باہر تشریف فرما ہوتے تھے, اپنے کمرے میں تشریف لے گئے اور کمرے کی کنڈی اندر سے لگا لی. وہ آیا, آنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھا, لیکن نہ اس کو یہ جرت ہوئی کہ کمرہ کھلواوے, نہ کسی اور کو کہا, بس تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا. اس کے بعد حضرت اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے. پھر ایک دوسرے موقع کے اوپر جو ہے وہ اپنے کسی سرکاری کام سے آیا اور جو ہے وہاں حکومت کا جو مہمان خانہ ہوا کرتا ہے وہاں ٹھہرا ہوا تھا. لوگوں نے حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ سے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کے متعلق جو ہے غلط شکایتیں حکومت میں پہنچائی گئی ہیں, تو ضرورت تھی کہ اس کا گویا اس غلط فہمی کو دور کیا جائے. اگر آپ کلیکٹر یہاں آیا ہوا ہے وہاں خالی جال ایک ملاقات کر لیں تو اس سے یہ غلط فہمی دور ہو سکتی ہے. حضرت نے کہا میں کیوں جاؤں, کہا اس سے آپ مدرسے کا فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, حضرت پالکی میں سوار ہوئے. بڑے بڑے علماء حضرت کی پالکی اٹھا کر لے جانے والے تھے. وہاں جب جو ہے وہ پہنچے ہیں سرکٹ ہاؤس کے دروازے کے سامنے, وہاں پالکی رکھی گئی, وہ اندر تھا. اس نے یہ منظر دیکھا, کھلے پاؤں دوڑتے ہوئے وہاں پالکی کے پاس آیا. حضرت پالکی سے باہر نکلے اور جو ہے اپنا حضرت نے اپنی نگاہیں نیچی رکھی اور اس نے آ کر کے حضرت سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. کہا انصاف سے کام لو اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں کے اوپر رحم کرو. بس اتنا جملہ فرمایا, پالکی میں بیٹھے اور واپس آ گئے. حضرت کے واپس آنے کے بعد وہ پوچھتا ہے لوگوں سے, بھئی یہ کون تھا, جب یہ میرے سامنے آئے تو میرا دل جو ہے نا لرزنے لگا اور میں بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس پہنچا. کہا یہ وہی ہیں جن کی ملاقات کے لیے آپ ایک مرتبہ گئے تھے اور جو ہے ملاقات کی نوبت نہیں آئی تھی. یہ کیا تھا, اتباع سنت کا ثمرہ تھا. سنت کی پیروی کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتے. ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت امام ربانی گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا, 6 مہینے رہا, واپس جانے لگا تو اس نے کہا کہ 6 مہینے رہا آپ کی خدمت میں कोई करामत मुझे नजर नहीं आई। तो हजरत ने उससे पूछा कि इन 6 महीनों में मेरा कोई काम, मेरी कोई चीज सुन्नत के खिलाफ तुमने देखी? उसने कहा नहीं। कहा बस फिर क्या करामत ढूंढते हो? ये अल्लाह का बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजार, 6 महीने तक कोई चीज उसकी खिलाफ सुन्नत नजर नहीं आई। करामत, करामत क्या है? करामत ये सुन्नत की पैरवी ये 1000 करामतों से बढ़ कर के है। अल्लामा मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी मस्जिद में दाखिल होते वक्त अपना दाहिना पांव पहले रखता है, गोया सुन्नत पर अमल करता है, और एक दूसरा आदमी है जो हवा में उड़ता है, तो वो 100 मरतबा हवा में उड़े तो भी ये जो 1 मरतबा सुन्नत के मुताबिक जब जो है अपना दाहिना पांव मस्जिद में पहले रख करके मस्जिद में दाखिल हुआ, उसके बराबरी वो कर सकता नहीं। इसलिए कि सुन्नत पर अमल करने के नतीजे में आदमी को अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, अल्लाह की मोहब्बत उसको हासिल होती है, और वो हवा में उड़ता है 100 मरतबा उड़े, उससे अल्लाह के कुर्ब में कोई इजाफा नहीं होता। चिड़िया भी हवा में उड़ती है। तो कहने का हासिल ये हुआ कि असल चीज़ ये है कि आदमी सुन्नत की पैरवी का एहतमाम करे। हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह, उनका मकाम जानते हैं वो, अकाबिर औलिया के अंदर कितना ऊंचा है, और उनके मुतालिक है कि 1 मरतबा सिलसिले चिश्तिया के एक बुजुर्ग उनकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि आपके शेख हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में 1 मरतबा मेरी तबीयत पर कब्ज़ा की कैफियत तारी हुई। कब्ज़ा का मतलब वो पाखाना बंद हो जाए, वो मेरा अंदर ना। सूफिया के यहाँ एक ख़ास कैफियत होती है कि उसमें आम तौर पर तो आदमी जब इबादत करता है तो इबादत के अंदर जी लगता है और अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता है, तबीयत में भी इबादत के लिए क्या होता है, इंशरा होता है। लेकिन कभी कभार इन अहलुल्लाह की तबीयतों पर भी इबादत के मामले में वो इंशरा नहीं, तबीयत में इंतबाह। जैसे हमारी तबीयत अच्छी होती है, खाना बराबर शौक और रगबत से खाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है खाना आया लेकिन खाने को जी चाहता नहीं। एक मिसाल देता हूँ, तो उनके हक में इबादत का हाल यही है। तो एक इनकबाली कैफियत थी कि मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे दरख्वास्त की कि आप मेरी मेरे लिए दुआ फरमाइए और मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। चुनांचे उन्होंने दुआ की और तवज्जो की, उसके नतीजे में वो कैफियत दूर हो गई। आज फिर मैं उसी कैफियत से दो चार हुआ हूँ, आज फिर वही कैफियत तारी हुई है। आपके वो शेख तो रहे नहीं, उनका तो इंतकाल हो गया, और उन्होंने इंतकाल के वक्त तो अपने तमाम मुरीदीन को और खुलफा को आपसे रुजू के लिए कहा था, मैं इसलिए आपकी खिदमत में आया हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें और जो है मेरे लिए मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं। जब उन बुजुर्ग ने यह दरख्वास्त दी तो हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में फरमाया, भाई मेरे पास तो इत्तिबाए सुन्नत के अलावा और कुछ नहीं है। ये जुमला इस अंदाज से फरमाया कि उन चिश्ती बुजुर्ग के ऊपर हाल तारी हो गया, डोलने लगे, और उनके इस डोलने के साथ साथ सरहीन की जमीन भी हिलने लगी। हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम से कहा, मेरी मिसवाक लाओ। वो लाया, वो उन्होंने मिसवाक लेकर जमीन पर मारी, जिसकी वजह से वो जमीन जो हिलती थी वो बंद हो गई। उसके बाद उन्होंने फरमाया, ये आपकी करामत है कि आपके इस हाल और वजद की कैफियत के नतीजे में सरीन की जमीन हिलने लगी। ये फकीर हजरत मुजद्दिद फरमा दे, ये फकीर अगर दुआ कर दे तो अल्लाह ताला सरीन की मुर्दों को जिंदा कर देंगे, लेकिन तुम्हारी ये करामत और मेरी उस करामत के मुकाबले में एक आदमी वजू के दौरान सुन्नत के मुताबिक मिसवाक करे, उसका वो करामत मुकाबला नहीं कर सकता। जाहिर है ये एक सुन्नत पर अमल की वजह से बंदे को जो मकाम हासिल होता है अल्लाह ताला के साथ कुर्ब का, वो किसी करामत के अंदर थोड़ी चीज है। हकीकत तो यही है कि हमें अपनी जिंदगियों को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक बनाने की जरूरत है। तो बहरहाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद में नकल कर रहा था कि जो आदमी सुन्नत की पैरवी का एहतमाम करता है उसको अल्लाह ताला चार चीज़ों से, चार एजाज और नेमतों से नवाजते हैं। एक तो ये कि नेक दिलों, नेक बंदों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देते हैं और गुनहगारों के दिलों में अल्लाह उसकी हैबत और रौब डाल देते हैं। वसात और फिर रिज के और रोज़ी में अल्लाह ताला उसकी बरकत अता फरमा दे। आज तो रोज़ी की बरकत के लिए लोग जो है मारे मारे फिरते हैं। आते हैं मौलवी साहब कोई वजीफ़ा बता दीजिए, बाज़ों का हाल तो यह है कि सुबह से शाम तक वजीफे, ये वजीफ़ा वो वजीफ़ा, वजी रोज़ी की बरकत के नाम से वजीफची बन जाते हैं। वजीफची समझा कि का यही काम, नमाज नहीं पढ़ेंगे लेकिन ये वजीफ़ा, भाई नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये वजीफे की तासीर क्या रहेगी। लेकिन बारह ऐसा है तो यहाँ सुन्नत की पैरवी के मुतालिक नबी करीम साहब वादा फरमा रहे हैं कि उसके नतीजे में अल्लाह ताला रोज़ी में क्या अता फरमाएंगे, बरकत। हमें सुन्नत की पैरवी उसके लिए नहीं करनी, हमें तो सुन्नत की पैरवी इसलिए करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको यही हुक्म दिया है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। पर ये जो रोज़ी की वसात कुशादगी वो तो ऐसा ही है जैसे भैंस को आदमी कोई वो गोबर के लिए नहीं लाता, भैंस तो लाता है गाय के लिए, दूध घी के वास्ते लाता है, लेकिन गोबर भी साथ में मिल जाता है। तो ऐसा असल तो हमें सुन्नत की पैरवी अल्लाह का क़ुर्ब और उसकी मोहब्बत हासिल करने के लिए करनी है, लेकिन ये रोज़ी की वसत खुद ब खुद हासिल हो जाएगी। अभी हमारे हजरत हकीम कलीमुल्लाह साहब दामत बरकात हूँ, जो हजरत मौलाना बराउल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह के दामाद भी हैं, उनके जानशीन भी हैं, उनके खलीफा भी हैं, अलीगढ़ के अंदर बड़े हाजी हकीम हैं। एक मरतबा उन्होंने फरमाया कि भाई एक आदमी का कर्जा था, उसको वो उसके मुतालिक उसने बताया उन्होंने हजरत ने कि भाई मैंने उससे कहा कि खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोया करो, और जब धो ना हाथ तो ये सोच कर धो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाने से पहले हाथ धोते थे इसलिए मैं भी धोता हूँ, और खाने के बाद भी जब हाथ धो तो इसी नीयत से धो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद हाथ धोते थे इसलिए मैं धोता हूँ। का चंद दिन इस पर अमल किया, सारा कर्जा अदा हो गया। बहुत सों को ये नुस्खा बताया, मैं नीयत ये होनी चाहिए क्या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है खाने से पहले हाथ धोते थे मैं इसीलिए धो रहा हूँ, आप खाने के बाद धोते थे मैं इसीलिए धो रहा हूँ। भैया ये चीज़ें यूं ही हैं, मुफ्त में मिल रही हैं। हमारे एक दोस्त हैं कारी याकूब साहब, दुबई में मुद्दतों रहे, अब तो घर आ गए हैं। उन्होंने खुद सुनाया कि एक मरतबा हजरत मौलाना अबराउल हक साहब नवर अल्लाह उमर कदव हरदोई वहाँ दुबई तशरीफ लाए हुए थे, वज़ू से फारिग हुए तो वो का वो पानी झाड़ रहे थे, रुमाल पेश किया, आपने रुमाल इस्तेमाल नहीं किया। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मेमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा वज़ू फरमाया और वज़ू के बाद आप हाथ को झाड़ रहे, आपको कपड़ा पेश किया गया, आपने वो इस्तेमाल नहीं फरमाया, और कभी इस्तेमाल फरमाया भी है। उलमा ने उसमें दोनों में यूँ जोड़ पैदा किया कि भाई गर्मी के ज़माने में वज़ू के बाद हाथ मुँह पूछने की ज़रूरत नहीं है, सर्दी में पूछा जा सकता है। खैर बहरहाल का कपड़ा पेश किया, हजरत ने कबूल नहीं किया और वो दुआ पढ़ रहे थे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िली ज़म्बी वसी लिफी दारी व बारिक लिफी रिज़्की, जो दुआ पढ़ी सुन्नत दुआ है वज़ू के बाद पढ़ी जाती है, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे और मेरे मकान के अंदर कुशादगी अता फरमा और मेरे रिज़्क में बरकत अता फरमा। हजरत ये दुआ पढ़ रहे थे, कहा हजरत ने ये बतलाया कि जो आदमी वज़ू के बाद ये दुआ इस नीयत से पढ़े कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी मैं सुन्नत को अदा करता हूँ तो अल्लाह ताला उसको उम्दा मकान अता फरमाएंगे। कारी साहब कहते हैं उस वक्त मेरे पास मकान था नहीं, मैंने घर आकर घर वालों से, वो तो अकेले रहते थे, कहा जब छुट्टी में आया तो अहलिया सर बच्चों से कहा भाई सब इस बात का एहतमाम करो कि वज़ू के बाद ये दुआ पढ़ें इसी नीयत से। कहा तो एक मुद्दत के बाद, कुछ मुद्दत के बाद अल्लाह ताला ने शानदार बंगला अता फरमा दिया। तो खैर ये तो ऐसी, ये लोग आजकल क्या है दुनिया का कोई फ़ायदा नजर आवे तो करते हैं, आखिरत की बातें की जाती है तो लोग नऊज़ु बिल्लाह यूँ सोचते हैं, यहाँ तो कुछ मिलना चाहिए। एक सोच मादूस सोच हमारी हो गई। खैर, ये इसलिए मैंने चंद मिसालें दी। हकीकत तो यह है कि सुन्नत की पैरवी के नतीजे में अल्लाह ताला दीन तो अता, आखिरत तो अता फरमाएंगे ही, वादा है, लेकिन दीन भी अता फरमाएंगे। उसी को सात और फिर रिस्क, दुनिया भी अता फरमाएंगे, सात और फिर रिस्क, रोजी में बरकत, वसीकतों भी दीन, और दीन पर मजबूती। सुन्नत की पैरवी के नतीजे में अल्लाह ताला दीन पर मजबूती अता फरमाते हैं, इसलिए इसका खास एहतमाम होना चाहिए। और भी कई रिवायतें हैं सुन्नत की पैरवी से मतलब, लेकिन हमें तो कहा गया एक 55 का, तो एक 55 जो है हो गए, बल्कि 56-57 होने जा रहे हैं। तो बहरहाल वो वहाँ हमारा रमज़ान साहब कह रहे हैं कि और आगे बढ़ाइए, लेकिन वो फिर भी 5-10 मिनट से भी वो ख़त्म होने वाला तो है नहीं, फिर भी यही माजरत करनी पड़ेगी। बहरहाल जो जिनको इससे इबरत हासिल करनी है, अमल करना है, उनके लिए ये काफ़ी है। एक हदीस इस सिलसिले में सुनाकर बात पूरी कर देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खादिम हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्होंने 10 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जब तशरीफ लाए, उस दिन से लेकर वफात तक पूरे 10 साल उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक नसीहत फरमाई। आप समझ सकते हैं कि एक आदमी अपने खादिम खास को जो नसीहत फरमाएगा उसकी अहमियत। तो फरमाया, या बुनैया इन कदर तान तुस्बिहा व तुमसिया वलैसा फी क़ल्बिका ग़श्शुन लिअहदिन फ़अफ़अल। ए मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम सुबह और शाम ऐसी हालत में करो कि तुम्हारे दिल में किसी के मुतालिक कोई कुदूरत मैल नहीं है, तुम किसी की बुराई नहीं चाहते। देखो आजकल इसकी भी बहुत ज़रूरत है। अपने दिल को क्या रखना चाहिए? पाक साफ। किसी से नाराजगी हुई वक्त ही बता दो, मामला साफ कर लो। दिल के अंदर का है, दिल को अल्लाह ने ये नहीं इसलिए नहीं अता फरमाया कि उसमें ये कूड़ा करकट डालें। दिल तो अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत, अपने ताल्लुक के लिए अता फरमाया है। तो बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद फरमाते हैं कि तुम सुबह और शाम ऐसी हालत में कर सकते हो कि तुम्हारे दिल में किसी के मुतालिक कोई मेल न हो, तो ऐसा करो। फिर आगे क्या फरमाते हैं? सुम्मा काल, या बुनैया इन्न ज़ालिका सुन्नती, ए मेरे प्यारे बेटे, ये मेरा तरीका है, मेरी सुन्नत है। वमन अहब्ब सुन्नती फ़कद अहब्बनी, ये जुमला असर बतना, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी कान मैया फिल जन्ना, और जिसने मेरे साथ मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत के अंदर होगा। तो ये सुन्नत की पैरवी, उसका एहतमाम, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत आपका साथ कहाँ? जन्नत के अंदर अता फरमाएगा। बहुत बड़ी चीज़ है एक आशिक के लिए, तो इससे बढ़कर और कोई चीज़ है ही नहीं। तो बहरहाल इसका ख़ास एहतमाम करना चाहिए। हम और आप यहाँ बैठे हैं, बहुत सी सुन्नतें ऐसी हैं जो हर आदमी को थोड़ी दो चार सुन्नतें तो जानता ही है। जितनी सुन्नतें आपके जान में, जानकारी में, इल्म में है, उन पर तो आज से ही अमल करना शुरू कर दो। देखो मैं पूछता हूँ, हर एक से पूछता हूँ, मेरा सोते वक्त की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वअहया। ये 5 साल के बच्चे से लेकर 60 साल 70 साल के बूढ़े को भी याद है। कोई ऐसा नहीं शायद जिसको ये दुआ है। लेकिन फिर दूसरा सवाल ये करूँगा मन में से कि भाई कल रात जब सोए थे तो कितनों ने ये दुआ पढ़ी थी? अपने दिल से जवाब मांग लो। तो बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि ऐसी बहुत सारी सुन्नतें हैं जो हमें मालूम हैं, लेकिन हम उस पर अमल का एहतमाम नहीं करते। जितनी सुन्नतें जानते हो उस पर अमल का एहतमाम करो, और जो नहीं हैं उनको जानकर जानने की कोशिश करो, सीखना शुरू कर दो। आपकी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैं ये नहीं कहता कि सब सुन्नतों पर अमल करो, ये कहूँगा कि जो करो वो सुन्नत के मुताबिक करो, जो काम करो सुन्नत के मुताबिक करो, सारी सुन्नतों पर अमल करो ये नहीं कहता। लेकिन ये कहता हूँ कि जो काम करो सुन्नत के मुताबिक करो। आज भी आप आज की इस मजलिस से ये अज़्म लेकर के उठिए कि हम भी सुन्नत पर अमल का अहतमाम करेंगे करेंगे यानी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लीजिए, यहाँ वैसे मौलाना रमज़ान साहब कुछ मुद्दत पहले मेरे पास तशरीफ़ लाए थे, वहाँ इनकी इमारत तामीर होने वाली थी कि उसकी बुनियाद डालने के लिए। मैंने कहा भाई मेरे आने में तो देर सवेर हो जाएगी, आप अपने काम को लेट मत करो, मैं तो जब मौका मेरा है आ जाऊँगा, लेकिन काम शुरू कर दो, दुआ उसके लिए कर लेंगे। उनका मुतालबा ये भी था कि आज उसकी दुआ भी हो जाए, तो वो दुआ और वैसे भी इस मौके यहाँ ज़रूरत है, हमें हर इलाके में मुसलमानों के लिए अपने हालात के वास्ते ज़रूरत दुआओं की ज़रूरत है। अगले सफ़र में हाजिर हुआ था उस मौके पर, यहाँ जो सुना गया था, यहाँ जो काने हैं हमारे मुसलमान भाइयों की, उन पर हुकूमत की तरफ से कुछ पाबंदियाँ लगाई गई थी, तो उस मौके पर भी अहतमाम हुआ था। बाद में सुना था कि वो पाबंदियाँ जो है इसने कॉरट ने कुछ उठा दी, लेकिन अभी तक उस पर अमल की नौबत आई नहीं है, अभी सिलसिला जारी है। बस अल्लाह ताला जो रुकावट है उसको दूर फरमाए, उसके लिए भी दुआ करनी है, अपनी सारी हाजतों के लिए दुआ करनी है।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका वतबारक अस्मुका वतआला जद्दुका वला इलाहा गैरु ला इलाहा इल्लल्लाहु लाहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद ला इलाहा इल्लल्लाहुल हन्नानुल मन्नानु بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما گنہگار ہیں خطاکار ہیں قصوروار ہیں اے اللہ ہماری اب تک کی زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے मौला माफ कर दे, तुझे माफी बहुत पसंद है। बंदे जब तुझसे अपने गुनाहों की मगफिरत चाहते हैं खुश होकर, तो फरिश्तों से कहता है कि ये बंदा जानता है कि उसके गुनाहों को मेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता, यकीनन या अल्लाह हमारे गुनाहों को आप ही माफ कर सकते हैं, हमारी मगफिरत फरमा, हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमा, हमारे अहलो आयाल की मगफिरत फरमा, हमारे भाई बहन, हमारी औलाद दर औलाद की मगफिरत फरमा, हमारे अज़ीज़ा और अकारीब, हमारे असातिज़ा और मशाइख, हमारे दोस्त और अहबाब, हमारे मुखलिसीन और मुहिब्बीन, हमारे मोहसिनीन और मुतालिकीन, और जिन्होंने हमसे दुआओं के लिए कहा लिखा, जो हमसे दुआओं की तवक्को उम्मीद रखे हुए हैं, और तमाम मोमिनीन और मोमिनात, मुस्लिमीन और मुस्लिमात, पूरी उम्मत मोहम्मदिया की मगफिरत फरमा, हमारे छोटे और बड़े, जाहिर और पोशीदा, अगले और पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारी सैयाद को हसनात से मुबदल फरमा, गुनाहों की नफरत और नेकियों की रगबत हमारे कुलूब के अंदर डाल दे। अल्लाह एक लम्हे के लिए भी तेरी मासियत और तुझसे गफलत में मुब्तला होने से हमारी पूरे पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह तू अपनी मर्जियात पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा चलाकर तेरी नामर्जियात से हमारी पूरे पूरी हिफाजत फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों और सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में जारी करने और अपनाने की अल्लाह तो हमें तौफीक व सआदत अता फरमा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों की मोहब्बत और गैरों के तरीक़ों की नफरत हमारे कुलूब के अंदर डाल दे। अल्लाह तमाम रज़ाइल से हमको पाक और साफ़ फरमा कर महासिन अखलाक से मुज़य्यन फरमा। दवाम ज़िक्र और दवाम ताहत की तौफीक अता फरमा। तमाम आमाल में इखलास, इत्तिबा और एहतिसाब की कैफियत नसीब फरमा। अल्लाह हमें, हमारे अहल आयाल और तमाम मुतालिकीन को सेहत, कुव्वत, आफियत, सलामती, दुनिया आखिरत की भलाइयों से माला माल फरमा। हमारी तमाम ज़रूरतों की तू अपने ख़जाने गैब से किफ़ालत फरमा। हमें किसी का मोहताज और दस्तनिगर न बना। हमारी रोज़ियों में बरकत और वसअत अता फरमा। अल्लाह तो हमारी औलादों को अकायद हक्का, उलूम नाफिया, आमाल साले, अखलाक फाजिला से आरास्ता फरमा। बुरे अखलाक, बुरे किरदार और गुफ्तार, बुरे आदात और अतवार, बुरी सोहबतों, बुरे माहौल के बुरे असरात और बुरे लोगों की बुरी आदतों का निशाना बनने से उनकी पूरे पूरी हिफाजत फरमा। अपनी शान रुबूबियत से अल्लाह तो उनकी तरबियत फरमा कर उनको हमारी आँखों की ठंडक, हमारे दिलों का सुरूर, हमारे लिए सदका जारिया और हमारी उम्मीदों से बढ़ करके बना दे। अल्लाह हमें और तमाम मुतालिकीन को नमाज का कायम करने वाला बना दे। नमाज को हमारी आँखों की ठंडक बना। नमाज का खुशू खुजू हमें अता फरमा। नमाज के अनवार बरक़ात से हमारी ज़िंदगियों और हमारे घरों को अल्लाह तो मुनव्वर और मामूर फरमा। इबादात का अहतमाम नसीब फरमा। मामलात की दुरुस्तगी अता फरमा। माशरत का हुस्न अता फरमा। आपसी हुकूक़ की अदायगी का अहतमाम नसीब फरमा। अल्लाह मुख्तलिफ हैसियतों से जो जिम्मेदारियाँ तूने हम पर लागू की हैं पूरी अमानत और दियानत के साथ उनको अदा करने की हमें तौफीक और सआदत अता फरमा। अल्लाह ईमान की सलामती के साथ दुनिया से जाना नसीब फरमा। ऐसी हालत में मौत आवे कि हमारे दिल ईमान के नूर से मुनव्वर हों, ज़बान पर कलमा तैयबा जारी हो, तू हमसे राज़ी हो और हम तुझसे राज़ी हों, तेरे और तेरे बंदों के हुकूक में से कोई हक हम पर वाजिबुल अदा बाकी न रह गया हो, ऐसी हालत में मौत अता फरमा। कब्र के अजाब से हिफाजत फरमा। महशर की हौलनाकियों से हिफाजत फरमा। उस दिन की रुसवाई से बचा ले। उस दिन अपने अर्श अजीम का साया नसीब फरमा। अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों हौज़े कौसर का जाम नसीब फरमा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात मरहमत फरमा। नेकियों के पलड़े को झुका दे। अल्लाह पुल सिरात पर से आफियत के साथ गुजार कर जहन्नम के अजाब से पूरे पूरी हिफाजत फरमा कर जन्नत के अंदर दुखूल अव्वलीन नसीब फरमा। अल्लाह यहाँ दरसगाहों की जिस इमारत का तामीरी सिलसिला शुरू किया जा चुका है, नहायत आफियत, सहूलत और कामयाबी के साथ तू उसको पाए तकमील तक पहुँचा दे। उसके मुकम्मल होने के लिए मादी, माली, قانونی اعتبار سے جو اسباب و وسائل مطلوب ہیں اپنے خزانے غیب سے مہیا فرما، تیرے مخیر بندوں کے دلوں میں اس کے لیے تعاون اور امداد کے جذبات کو بیدار فرما۔ اللہ اس مدرسے کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما۔ اللہ اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما۔ ہر قسم کے شرور، فتن، آفات، بلیات، مکارے سے اس کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اس کی تمام ضروریات کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما۔ اے اللہ، پڑھنے والے بچوں کو علوم نافع، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما۔ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما۔ مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما۔ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے، اے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، اس بستی کے تیرے بندے، تجھ پر ایمان رکھنے والے، مدتوں سے اے اللہ حکومت کے اس حکم کی وجہ سے کہ کانوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، بہت ساری مشکلات سے دوچار ہیں۔ اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرماتے ہوئے، اے اللہ اس پابندی کو ہٹوا دے۔ اللہ تو نے فیصلہ تو کروا دیا ہے، اللہ اس فیصلے کے اوپر عمل کو بھی آسان کروا دے۔ جو جو رکاوٹیں ہیں دور فرما۔ اللہ، محض مسلمان ہونے کے ناطے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، اللہ تو اپنی شان کریمی سے اللہ اس مصیبت کو دور فرما، رکاوٹ کو دور فرما۔ ہر بندے کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ اس بستی پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے، اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما۔ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اللہ اس ملک میں شاعر اسلامیہ کی پورے پوری حفاظت فرما۔ ہمارے اکابر، تیرے نیک بندوں نے یہاں جو سلسلے جاری کیے ہیں دین کے، اللہ ہر ہر سلسلے کو ترقی کے نواز کر آگے بڑھا دے۔ ہماری بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ ان نعمتوں سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اللہ ہندوتو کے علم برداروں کی اللہ ایجنڈوں کو اور کوششوں کو ناکام کر دے۔ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اس ملک میں رہنے والے ہر ہر فرد کو امن و امان، سکون و چین اللہ عطا فرما دے۔ بسنے والی قوموں میں آپس میں مودت، رحمت، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کو عام فرما دے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی، اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس مجلس میں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا جینا کتائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔